سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو معارف و مسائل اس کے ہم پڑھنے پچھلی کلاس میں شروع کر چکے تھے. شروع میں جو پہلی ہیرنگ ہے اس کی وہ ہے خفیہ مشوروں کے متعلق ایک ہدایت. ٹھیک ہے, یہ ہیرنگ ہم نے پڑھ لی تھی جس میں ان پہلی آیت کے متعلق تھا کہ جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ حاضر ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی ذات جو کہ بلا کیف ہے, ہم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, سب کچھ سن رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہوتا کیونکہ جسم کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جسم ہے کیسا, کیا ہے بھی کس طرح کا ہے نہیں ہے, یہ ساری ڈسکشن میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہمارے جو علماء ہیں اہل سنت والجماعت کے, وہ بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا کیف, یعنی وداؤٹ اینی کیفیت جس کو کہ ہم سمجھ سکیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیوں کہنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ بس اللہ تعالیٰ صرف عرش کے اوپر ہے اور کہیں اور نہیں ہے, کہیں اور نہیں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ یعنی لمٹ لیس ہے, کوئی اس کی انتہا نہیں ہے, آپ اس کو لمٹ نہیں کر سکتے کسی جگہ میں. ٹھیک ہے, کہ بس وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے, یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے, تو اس وجہ سے پھر یہ بات سمجھائی جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے, وہ پریشان ہو جائے, سوچ میں پڑ جائے کہ بس اب کیا ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, یہ اس قسم کے نا, کیونکہ شیطانی وساوس بھی تو انسان کے اندر آتے ہیں نا. جتنا انسان گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے, نافرمانی کے ماحول میں رہتا ہے, تو اتنا زیادہ نا شیطان کے وساوس اس کے اوپر غالب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عمومی طور پر جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے, کیونکہ ہم عام لوگ ہیں سارے کے سارے اور گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں, تو اس وجہ سے شیطانی وساوس کا ہمارے اوپر غلبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کو اس غلبے سے بچانے کی خاطر بس اتنا سمجھا دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ سن رہا ہے, سب کچھ کی خبر رکھتا ہے. اس کے بعد اگلی ہیرنگ ہے سرگوشی اور مشورے کے متعلق ایک ہدایت. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى, تو واقعہ شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ جس زمانے میں یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ صلح ہو گیا تھا, اس وقت وہ کھل کر تو مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ معاہدہ جب کر لیتے تھا نا کوئی بھی, آج بھی جب کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو پھر اب کھل کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر کھل کے کرے گا تو پھر اگلے فریق کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس معاہدے کو ختم کر دے, اینل کر دے. ٹھیک ہے, تو اب ایسے معاملے میں نا پھر وہ یعنی بند جاتے ہیں معاہدے کے اندر نا, بند جاتے ہیں. تو اب یہ جو ایک پوائنٹ ہے کہ کیا کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے اچھا کافر کون ہوتا ہے, یہ گناہ کے سب سے اونچے درجے پر جو فائز ہوتا ہے نا اس کو کافر کہتے ہیں. یہ سب سے اونچا درجہ کیا ہے گناہ کا؟ جی اگر آپ سے پوچھیں گناہ کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ شرک. ٹھیک ہے, بالکل صحیح جواب دیا آپ نے, شرک. تو یہ کافر جو ہوتے ہیں نا یہ گناہگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑے گناہگار. تو ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ صلح کا کیا. ٹھیک ہے, اور پھر اب اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جی آپ یہ کام نہیں کریں گے, ہم یہ کام نہیں کریں گے, آپ جو ہے وہ اپنے ٹیریٹری میں رہ کر کے جو آپ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے, ہم اپنی ٹیریٹری میں رہ کر کے جو کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں معاہدے کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ معاہدہ جس طریقے سے سب سے بڑے گناہگاروں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے نا, تو اسی طریقے سے چھوٹے گناہگاروں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. چھوٹے گناہگار کون ہوتے ہیں؟ جو کہ شرک نہیں کرتے, اعلانیہ شرک نہیں کرتے, بلکہ مشرکانہ کام کر لیتے ہیں لیکن اپنے شرک کا برمنا اظہار نہیں کرتے. مشرکانہ کام, مشرکانہ کام کیسے ہو سکتے ہیں کہ جیسے کہ جو عقیدے کے یہ جو ہوتا ہے نا, جس کو اہل بدعت کہتے ہیں, اہل بدعت لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں عام طور پر ان کے لیے ٹرم بریلوی کی استعمال ہوتی ہے, لیکن وہ ایکچولی بریلوی کوئی ٹرم ہے نہیں, اصل ٹرم جو ہے وہ اہل بدعت ہے, بدعت میں مبتلا لوگ. اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی جا کر کے قبر کے اوپر سجدہ بھی کر کے آ جاتے ہیں, قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ قبر والوں سے جو ہے وہ اپنی بہت ساری اس طرح کے کام ہیں جن کو کہ ہم شرک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو شرکیہ افعال کہلاتے ہیں, لیکن ان کے کر دینے سے یہ مشرک نہیں ہو جاتے ہیں, آپ ان کو کافر نہیں قرار دے سکتے, ٹھیک ہے. کافر قرار دینے کے لیے جو شرائط ہیں وہ الگ شرائط ہیں, اور ان کی وجہ سے کسی کو خالی کافر قرار دیا جا سکتا ہے, ان اعمال کی وجہ سے خالی کافر قرار نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے. وہ ساری تفصیل جو ہے ویسے تو ہم کافی حد تک پڑھ بھی چکے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام کسی کو کافر قرار دینے کا اس کی تو ہمارے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم تو کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں. یہ تو کام بڑے اکابر علماء مفتی حضرات کا کام ہے, جو کہ ظاہر ہے ہم لوگ نہیں ہیں. تو یہ مشرکانہ اعمال ہوتے ہیں, افعال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے یہ مشرک تو نہیں ہو جاتے نا, لیکن فاسق اور فاجر کہلاتے ہیں, گناہگار, ٹھیک ہے, اور عقیدے کی کسی نہ کسی درجے کی گمراہی کے اندر مبتلا یہ کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور مسلمان ہوتے ہیں جو کہ عمل بہت گناہوں والے عمل کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کھل کے نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں, اور یعنی کنٹینیوسلی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں اور کھل کر کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ موسیقی اور زنا کے جیسے جو افعال ہوتے ہیں, ان کے کھل کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں, یہ فاسق اور فاجر کہلاتے ہیں. تو بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑے والے گناہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے ساتھ صلح کری ہے نا, تو پھر اسی پر قیاس کیا جاتا ہے کہ فاسق اور فاجر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی صلح کرنا جائز ہوتا ہے, معاہدہ کرنا, صلح کا معاہدہ کرنا, اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر باہمی ایگری ہو کر کے کوئی کام کرنا وغیرہ, اس طرح کی چیزیں جائز ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر پھر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ کیوں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں, یہ کیوں جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کے تحریک چلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا خصوصاً علماء کرام کے اوپر, یہ اعتراض جو ہے اس کی کوئی یعنی ویلیو نہیں ہے اس اعتراض کی, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے ساتھ معاہدہ صلح کیا تھا, اس وقت وہ کھل کر تو مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. معاہدہ صلح کی ایک حکمت یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ وہ آپ کے ساتھ پھر اب کھل کے مخالفت نہ کر سکیں, مگر معاہدہ کرنے سے دل تو نہیں بدل جاتے نا ان کے, رائٹ, کہ وہ دل سے بھی آپ کی مخالفت چھوڑ دیتے, ایسا تو نہیں ہوا. جیسے آج بھی ایسا نہیں ہوتا, جو فاسق فاجر ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ پولیٹیکل اتحاد تو کر سکتے ہیں, رائٹ, لیکن اس کی وجہ سے وہ دل میں تو آپ کو پسند نہیں کرنا شروع کر دیتے, دل میں تو ویسے ہی مولوی صاحب کو گالی دے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ویسے دے رہے ہوتے ہیں, دل میں تو وہی ان کے بغض اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دل نہیں بدلتا معاہدہ کرنے سے. ہاں ایک ایڈمنسٹریٹو اور یعنی یہ آبجیکٹیوز آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں سے دل میں بھرا ہوا بغض نکالنے کا ایک یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا, نکالنے کا مطلب کہ ایکسپریس کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو اپنے قریب آتے دیکھتے تھے تو باہم سرگوشی اور خفیہ مشورے کی شکل بنا لیتے تھے. یعنی معاہدے میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی یہ بری حرکتیں بھی چل رہی ہوتی تھیں, اور آنے والے مسلمانوں کی طرف کچھ اشارے کرتے جس سے ان کو یہ خیال پیدا ہوتا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں, اور اس سے پریشانی اور رنج ہوتا ان کو, یعنی وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے. یعنی رنج یہ وہ والا رنج نہیں کہ اپنوں سے جب کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو رنج ہوتا ہے, یہاں پر وہ والا رنج مراد نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنے نہیں تھے, یہ تو دشمن تھے, ٹھیک ہے. تو ان کو مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی, اور ایک دل کے اندر جو ایک ہیوینس سی آپ کو محسوس ہوتی ہے نا کہ کوئی آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, تو اسی قسم کی ان کو فیلنگ محسوس ہوتی تھی مسلمانوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی سرگوشی سے منع فرمایا, ٹھیک ہے, یعنی ان کافروں کو منع فرمایا، یا جو منافقین تھے جو کہ حقیقت میں کافر تھے لیکن اوپر سے تو کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا، تو ان کو منع کیا کہ جی آپ اس طرح سے سرگوشی نہ کیا کریں. نحو عن النجوہ میں اسی ممانعت کا بیان ہے، یعنی اس والی آیت میں، دوسری آیت جو تھی جو آج ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس ممانعت سے یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی نکل آیا کہ وہ بھی آپس میں کوئی سرگوشی اور مشورہ اس طرح نہ کریں جس سے کسی دوسرے مسلمان کو ایزا پہنچے. بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثتن، کہ اگر تم تین ہو، فلا یتناجا رجلانی، تو ان دونوں میں سے اگر دو آپس میں، یعنی ان تینوں میں سے اگر دو آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیں، دون الاخرے، تیسرے کو چھوڑ کر کے، حتی یخلطوا بالناس فان ذلك یحزنہ، ٹھیک ہے، جب تک کہ دوسرے آدمی نہ آ جائیں. اچھا، تو فلا یتناجا رجلان دون الاخری حتی یختلطوا بالناس فان ذلك یحزنہ، یعنی تم اگر تین آدمی جمع ہو اور دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر باہم سرگوشی اور خفیہ باتیں نہ کیا کرو جب تک کہ دوسرے آدمی نہ آ جائیں، کیونکہ اس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر صرف تین موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور دو آپس میں سرگوشی شروع کر دیں تو تیسرا تنہا رہ جائے گا نا، رائٹ. تو اب تیسرے کو یہ فیل ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے کیوں اپنی ڈسکشن میں سے آؤٹ کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر تو صرف تین ہی لوگ ہیں، تو ہم تینوں کو آپس میں کھل کے بات کرنی چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے ایک کو نہ الگ کر دیا ہے اپنے سے، ٹھیک ہے. تو جب تک دوسرے لوگ نہ آ جائیں اس وقت تک تم ایسے سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ جب دوسرے لوگ آ جائیں گے نا تو اب اس کے پاس، یعنی تیسرے شخص کے پاس بھی کوئی کمپنی اویلیبل ہوگی، یہ بھی کسی اور سے بات کرنا شروع ہو جائے گا، اور لوگوں سے بات کرنا شروع ہو جائے گا. اب اس کو نا دو لوگوں کی جو سرگوشی ہے وہ گرا نہیں گزرے گی، اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو ایسا جو ہے نا یہ الاؤڈ ہے کہ دو لوگ اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو باقی دو لوگ جو ہیں وہ پھر آپس میں بات کرنا شروع کر دیں، اور مزید دو لوگ جو ہیں وہ پھر آپس میں بات کرنا شروع کر دیں، ایز لانگ ایز کہ اس قسم کی مجلس میں کوئی سربراہ مجلس نہ ہو جس کی کہ سب کو بات سننی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک کان ہو کر کے سب کو بات سننی چاہیے. اگر سربراہ مجلس موجود ہو، اگر کوئی سربراہ مجلس ہے ہی نہیں تو پھر دو دو تین تین کی ٹولیوں کے اندر لوگ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وچ از ناٹ اے پرابلم، ٹھیک ہے. تو یہ آداب معاشرت ہوئے کہ آپس میں تعلقات میں جو ہے نا وہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دنوں کے اندر رنجشیں اور دشمنیاں، کینہ وغیرہ پیدا نہ ہو. اچھا، غیریت اور اجنبیت کا اس کو احساس ہوگا اور ممکن ہے کہ ایسے شبہات پیدا ہو جائیں کہ شاید یہ دونوں کوئی بات میرے خلاف ہی کر رہے ہیں جو مجھ سے چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے اس حکم کی کہ تین لوگوں میں دو آپس میں سرگوشی کرنا نہ شروع کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد والی آیت تھی. تو سابقہ آیات میں کفار کو ناجائز سرگوشی پر تنبیہ کی گئی تھی، اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے خاص کر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا کہ اپنی سرگوشیوں اور مشوروں میں اس کا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب حالات اور گفتگو کا علم ہے، اور اس استحضار کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کے مشورے اور سرگوشی میں کوئی بات فی نفسی ہی گناہ کی یا دوسروں پر ظلم کرنے کی یا کسی خلاف شرع کام کی نہ ہو، بلکہ جب بھی آپس میں مشورہ کرو نیک کاموں کے لیے کرو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کر کے، براہ راست مخاطب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ والی آیت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل نہیں ہوئی بلکہ صحابہ کے دلوں پر نازل ہوئی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ نازل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تلاوت کر کے صحابہ کو سنائی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خالی نہیں کیا جا رہا بلکہ سارے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ بہت ساری آیتیں ایسی بھی تو ہیں نا کہ جس کے اندر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ ایسی آیت نہیں ہے. इसकी एक छोटी सी यानी तशरीह जो कि हम पीछे कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं उसको रिपीट करने की खातिर कि या अय्युहल लज़ीना आमनू के अंदर एक लतीफ़ पहलू ये निकलता है कि ए ईमान वालों, तुम तो मानने वाले हो, तुम तो ईमान लाने वाले हो, तुमने तो अपनी जुबान से इकरार किया है कि मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, दिल से इस बात की तस्दीक भी करी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी और रसूल हैं, तो जो कुछ ये तुम्हें बताते हैं ये मेरी तरफ से तुम्हें हुक्म होता है, तुमने इन सब बातों की तस्दीक करी है, तुमने इन सब बातों का इकरार किया है, तो तुम तो अच्छे बच्चे हो, राइट? इसी तरह से आप लोगों को समझाया था ना कि जैसे कि घर के अंदर कुछ शरारती बच्चे होते हैं और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, तो शरारती बच्चों से तो हम तवक्को रखते हैं कि हाँ भाई उन्होंने तो हर वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ी करनी है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनसे हम तवक्को नहीं रखते गड़बड़ करने की, तो अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए ना तो हम उनको क्या कहते हैं, आपने ऐसा क्यों कर लिया, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप तो मानने वाले बच्चे हैं, आप तो ऐसी शरारतें नहीं किया करते हैं, इस तरह से उनको याद दिलाते हैं ना उनका अच्छा बच्चा होना। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला भी ईमान वालों को याद दिलाते हैं कि तुम तो मेरे अच्छे बंदे हो, तो तुम तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करो, ये तुम्हारे तो यानी तुम्हारे शान के खिलाफ है, ये तुम्हारे शायान शान ये बातें नहीं है, ठीक है? तो तुम जब आपस में मशवरा किया करो ना तो ये अच्छी तरह से याद रखा करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर बात से वाकिफ है, तो कोई भी बात गुनाह वाली ना हो तुम्हारे मशवरे के अंदर। जैसे एक और जगह पे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया ना कि वताआवनु अलल बिर्र व तक्वा, कि एक दूसरे के साथ ताआवुन करो नेकी और तकवा के कामों के अंदर, वला ताआवनु अलल इस्मि वल उदवान, बिल्कुल यही अल्फाज वहां भी इस्तेमाल किए कि एक दूसरे के साथ ताआवुन ना करो गुनाह के काम के अंदर और सरकशी के कामों के अंदर, ज्यादती के कामों के अंदर ताआवुन ना करो एक दूसरे के साथ, ठीक है? यानी या तो अगले बंदे को रोक दो कि वो गुनाह और सरकशी का काम ना करे, या अगर रोक नहीं सकते हो तो कम से कम गुनाह में उसको असिस्ट तो ना करो ना, राइट? तो वही अल्फाज अल्लाह ताला ने यहाँ भी मशवरे के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए हैं कि मशवरा करो आपस में बिर और तकवा के कामों के लिए, और इस्म और उदवान के लिए मशवरा ना करो। अब कुफार की शरारत पर भी नरमी और शरीफाना मुदाफ़ियत की हिदायत, कि वो शरारत भी करें ना तो हम अपनी मुदाफ़ियत जो है वो शराफत के साथ करें, शरारत के बदले में शराफत, ये सिखाया गया है, ठीक है, हमारे दीन के अंदर। तो अब ये शराफत जिसको आती होगी वही शराफत से करेगा ना, तो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिखाई है शराफत, शराफत के तरीके सिखाए हैं, और सहाबा ने नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराफत के तरीके सीखे। जैसे कि सामने एक वाक़िया भी आ रहा है कि साबिका आयात के ज़मन में यहूदियों और मुनाफिकों की एक शरारत ये भी जिक्र की गई है कि वो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो बजाय अस्सलामु अलैकुम के अस्सामु अलैकुम कहते थे, ठीक है? जैसे आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि वह इज़ा जाऊ का, कि जब ये आपके पास आते हैं, हय्यऊ का, तो ये आपको ग्रीट करते हैं, बिमा लम युहय्य का बिहिल्लाहु, इस अंदाज में कि जिस अंदाज में अल्लाह ने आपको ग्रीट नहीं किया है। अल्लाह ने कैसे ग्रीट किया है, नबी रसूल सलाम को सलाम के जरिए से ग्रीट किया है, तो ये साम के जरिए से ग्रीट करते थे यानी मौत, तो साम के मानी मौत के हैं, और लफ्जों में ज्यादा फर्क ना होने के सबब मुसलमानों को इस तरफ इल्तफात नहीं होता था कि असल में कह क्या रहे। एक रोज ऐसा ही हुआ, सदीका आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी सुन रही थी, जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी इन मुनाफिकीन और यहूदियों ने जब अस्सलामु अलैकुम से नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रीट किया ना, तो सिद्दीक आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम, कि मौत तुम्हारे ऊपर हो, व लअनकुमुल्लाहु, और अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, व गज़ब अलैकुम, और अल्लाह ताला का गज़ब हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है? ये जाहिर है नबी अलैहि सलाम की महबूबा भी थी और नबी अलैहि सलाम की आशिका भी थी, जैसे कि सारे सहाबी आशिक थे, नबी अलैहि सलाम के सहाबियात भी आशिका थी नबी अलैहि सलाम की, ठीक है? तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये नबी अलैहि सलाम को ऐसे अल्फाज कह रहे हैं, इन्होंने ना यानी सही से टिका के जवाब दिया जिसको कहते हैं, ठीक है? तो नबी अलैहि सलाम ने हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसा करने से रोका और फरमाया कि अल्लाह ताला फुहश कलाम को पसंद नहीं फरमाते, आपको सख्ती और दुरुस्ती से बचना और नरमी इख्तियार करनी चाहिए। तो सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं सुना कि کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں سن بھی لیا اور اس کا معتدل بدلہ بھی لے لیا، یعنی میں ان سے آلریڈی بدلہ لے چکا ہوں کہ میں نے جواب میں کہہ دیا علیکم، یعنی ہلاکت تم پر ہو، یعنی جو تم نے کہا ہے نا یہی تمہارے اوپر ہو، علیکم تمہارے اوپر، علیکم کا مطلب تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی ریٹرن کر دیا. اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی دعا تو قبول ہوگی نہیں، میری دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایمان کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ایمان والے خود تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے اوپر سب سے زیادہ ایمان تھا، سب سے زیادہ یقین تھا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ پتہ نہیں میں واقعی اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں ہوں، پتہ نہیں مجھے میرے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، ایسا بالکل شک و شبہ کا معاملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکا یقین تھا اس بات کے اوپر، اطمینان تھا کہ میری دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو وہی فرما دیا کہ ان کی دعا تو قبول نہیں ہوگی اور میری دعا قبول ہو گئی، اس لیے ان کی شرارت کا بدلہ ہو گیا. رواہ البخاری از مظہری، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حکم دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہ ایسے الفاظ سے آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جہاں پر فرعون کا واقعہ قرآن کے اندر ہے نا، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو کیا کہا کہ قولو لہو یا قولا لہو قولا لینا، کہ تم دونوں جا کر کے اس سے بات کرو، ایک نرم انداز میں بات کرو، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو نرم انداز میں بات کرنا ہے نا، تو اس کی بھی کچھ تفصیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی نرم انداز میں بات کرنے کی کچھ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی جو ہے وہ نرم انداز میں بات کرنا چاہیے، کبھی کبھی جو ہے وہ سخت انداز میں بات کرنا بھی ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کچھ ایکسیپشنل یا اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جن میں اگلے بندے سے، مخاطب سے سخت انداز میں بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی ایسی یعنی حرکت کر رہا ہوتا ہے، ایسا جو ہے وہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے کہ سختی سے نمٹنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ رول نہیں ہوتا، یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. رول کیا ہے کہ جیسے ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جب آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیشن کر رہے ہیں نا، تو وہ نرم انداز میں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی غلطی سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، وہ نیک بن جائے، جو جس وجہ سے وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے اس وجہ کو ہی چھوڑ دے. تو یہ جب یعنی ذہن میں ہوتا ہے نا، تو پھر آٹومیٹکلی بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اگلے بندہ جو ہے وہ یعنی اس سے نرمی کا معاملہ اختیار کرے. اس کے علاوہ ہمارے مشائخ نے ایک اور بھی بڑے یعنی مزے کی بات لکھی ہے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ہی معرف القرآن کے اندر کسی اکابر کا قول نقل کیا ہے، وہ اگزیکٹلی مجھے جگہ اس کی یاد نہیں ہے، لیکن فرمایا ہے کہ جو انڈیویجول لیول پہ بات چیت ہوتی ہے نا، کسی سے آپ انفرادی لیول پہ بات چیت کرتے ہیں، تو اس کے اندر نرمی اختیار کرنی یہ حکمت ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اجتماعی شکل میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جس کو کہ ہم لیکچر یا بیان وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کے اندر قدر سختی جو ہے نا یہ حکمت ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اس کے لیے کبھی اور انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو انڈیویجول بات چیت کے اندر نرمی اختیار کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نرمی اختیار کرنے سے ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا، اگرچہ کہ یعنی کلیکٹیو جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، مطلب بیان وغیرہ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں بھی نرمی اختیار کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے اندر سختی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اسی سے جو ہے وہ فائدہ زیادہ حاصل ہوتا ہے. بہرحال بعض آداب مجلس، تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا الآیہ، یعنی اس آیت کے آخر تک. تو یہ حکم عام مجالس کا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، کہ جب مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آ جائیں تو مسلمان ان کے لیے جگہ دینے کی کوشش کریں اور سمٹ کر بیٹھ جائیں. ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرما دیں گے. یہ وسعت آخرت میں تو ظاہر ہی ہے، کچھ بعید نہیں کہ دنیاوی معیشت میں بھی یہ وسعت حاصل ہو. यानी जब हम दूसरों के लिए जगह बनाते हैं ना, एकोमोडेट करते हैं दूसरों को, तो इस एकोमोडेशन का एक तो अजर आखिरत में तो मिलेगा ही सही, लेकिन दुनिया में भी ना इसके असरात नमूदार होते हैं। दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें हमारे लिए मामलात के अंदर आसानी पैदा फरमा देते हैं। ठीक है, अब ये आसानी कभी हमें बज़ाहिर नज़र भी आना शुरू हो जाती है कि जी कैसे आसानी पैदा हुई। मिसाल के तौर पर आपने किसी के साथ ऐसा मामला किया कि उनके लिए, यानी उनको आपने अच्छी तरीके से अकोमोडेट किया, अपने घर में अकोमोडेट किया, अपनी मजलिस में अकोमोडेट किया, या अपने मामलात में अकोमोडेट किया, तो अब ना वो बंदा अपने दिल के अंदर आपका एक एहसान मंद हो जाता है और आपके साथ एक अच्छा उसका एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। अब इस रिलेशनशिप के नतीजे में वो भी आपके साथ, जब उसको मौका मौका मिलता है तो वो भी आपको इसी तरीके से अकोमोडेट करता है। ठीक है, तो अब जब वो आपको अकोमोडेट करेगा तो जाहिर है कि आपके जो दुनियावी मामलात हैं उनमें आपको फायदा होगा, आपकी मईशत और आपके जो कारोबार है और आपके जो मामलात हैं वो आसान हो जाएंगे। जब लोग आपको असिस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके आसान हो जाएंगे। तो ये आपको कभी नजर भी आ रहा होता है कि भाई आपने उसके साथ अच्छा किया, उसने इन रिटर्न आपके साथ अच्छा किया और आपके फायदे हो गए। लेकिन कभी होता है कि आपको बजाहिर नजर नहीं आ रहा होता, जैसे आपने किसी के साथ अच्छा किया लेकिन वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, तो अब आपको नजर नहीं आ रहा, कोई टिट फॉर टैट वाला मामला नजर नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला किसी और जरिए से आपकी जिंदगी के अंदर वसत पैदा कर सकते हैं, किसी और को उसके दिन में बात डाल सकते हैं कि वो आपके लिए अकोमोडेटिंग बन जाए। ठीक है, तो उसको आप, जरूरी नहीं है कि इन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करने के भी काबिल हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला तो जानते हैं ना, अल्लाह ताला ने तो हर चीज को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चाहे हमें समझ में आए या हमें समझ में ना आए। इतना सारा आपने क्या लिख दिया? अच्छा, पहले आपका पढ़े पहले दूसरे पढ़े? चलिए आपका पढ़ लेते हैं। इंडिया में एक कट्टर फिरका परस्त हिंदू लीडर ने हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की 3 साल पहले। कुछ दिन पहले 3 मुसलमानों ने उस गुस्ताख हिंदू लीडर को वासिले जहन्नुम कर दिया। इंडिया में रह के ऐसा करे तो सवाब है या ऐसा नहीं करना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में? ये भी कोई पूछने का सवाल है। नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के बाद जो है ना, फिर कोई चीज़ नहीं बचती। ठीक है, तो मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई बड़ा आलिम वगैरह इस किस्म की चीज़ नहीं हूँ, तो मैं इसके ऊपर फतवा देने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी बड़ों ने इसको इसका जवाब दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछना है तो पूछ लें, वरना तो ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन आंसर हुआ हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के बाद फिर किसी चीज़ की कोई कोई और वक्त नहीं रहती है। ठीक है, तो मुफ्ती साहब का तो एक रिकॉर्डिंग मौजूद भी है, मुफ्ती क्या नाम है आजकल बड़े मशहूर है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, कहते हैं अगर इस किस्म का कोई चीज़ हमारे सामने आए ना, फिर आप कुछ ना देखें, बस उधर ही मामला अपने हाथ से मामला ख़त्म करें और बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो ये जलसे जुलूस और मुजाहरे वगैरह तो ये बात की बातें हैं, वो तो हम लोग क्योंकि कुछ कर नहीं पाते हैं तो इस वजह से जलसे निकालना शुरू कर देते हैं, जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इसमें फिर ये डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, इसकी क्या हैसियत है डेमोक्रेसी? बहरहाल, अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। ये बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं, तो इसके अंदर अल्लाह से बस आफियत ही मांगते रहना चाहिए। कि इस आयत में दूसरा हुक्म आदाब मजलिस के मुताल्लिक ये है कि इदा कीला, कि जब कहा जाए कि उनशुजू फनशुजू, यानी जब तुमसे किसी से कहा जाए या तुम में से किसी से कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ, तो उसे उठ जाना चाहिए। इस आयत में लफ्ज़ कीला मजहूल इस्तेमाल फरमाया है, इसका जिक्र नहीं कि ये कहने वाला कौन है, मगर अहदीस सहीह से मालूम होता है कि खुद आने वाले शख्स को अपने लिए जगह करने के वास्ते किसी को उसकी जगह से उठाना जायज़ नहीं है। ठीक है, यानी कोई साहब जो है वो मजलिस में भी एंटर हो रहे हैं और उनको जगह नहीं मिल रही है ना, तो अब वो लोगों को कहना शुरू कर दें कि जी आप जरा उठ जाएं ताकि मुझे बैठने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे शख्स को तो जो बाहर से आ रहा है तो उसको लोगों को उठाना जायज़ नहीं है। सहीहैन और मुसनद अहमद में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युकीमुर रजुलु अर रजुला मिन मजलिसिही فَيَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرو. ٹھیک ہے، بس یعنی سمٹ جانا چاہیے، اپنی جگہوں سے نا تھوڑا موو ہو جانا چاہیے، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، موو ہو جانا چاہیے، اور موو ہونے سے اچھی خاصی جگہ بن جاتی ہے. جیسے عموماً بیانات کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں نا تو بہت کھل کر کے اور ایسے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فوراً ہی کمرہ بھر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اگلے بندے کے لیے آنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو شروع سے ہی جو ہے نا وہ آگے بیٹھنا چاہیے. جیسے مسجدوں کے اندر بھی جاتے ہیں نا جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، خصوصاً جو دروازے سے انٹر ہونے کے راستے ہوتے ہیں نا وہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اب کوئی بندہ آ رہا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھا ہے، وہ آپ یعنی گھوم کر کے نہیں آ سکتا نا اندر، اس نے تو اسی راستے سے آگے جانا ہے، اور ماشاءاللہ اس راستے کے اوپر حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لمبی لمبی ٹانگیں بھی پسر کر کے یعنی پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً راستے کے اوپر یا دروازے کے اوپر تو بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اوور آل کشادہ جگہ بھی ہے نا تو اس میں بھی نا جو یعنی جیسے خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، تو ان کے قریب قریب جا کر کے جتنا ممکن ہو اتنا بیٹھنا چاہیے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے گنجائش آسانی سے بنتی رہے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر بیچ میں پھر بولنا پڑتا ہے کہ جی ادھر آؤٹ کر کے آگے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے بھی جگہ بن جائے. تو اسے معلوم ہوا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہنا آنے والے شخص کے لیے تو جائز نہیں ہے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ اس کا کہنے والا میر مجلس یعنی امیر مجلس، مجلس کا جو سربراہ ہوتا ہے، یا مجلس کا انتظام کرنے والے افراد ہو سکتے ہیں. جیسے جو آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ میر مجلس نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ بھئی دے آر ڈوئنگ دی آرگنائزیشن، تو اب ان کی بھی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے، ڈسپلن اسی کو کہتے ہیں. تو معلوم مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اگر میر مجلس یا اس کی طرف سے مقرر کردہ منتظمین کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہیں تو ادب مجلس یہ ہے کہ ان سے مزاحمت نہ کرے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے اٹھ جائے، کیونکہ بعض اوقات خود صاحب مجلس کسی ضرورت سے خلوت اختیار کرنا چاہتا ہے، یا کچھ مخصوص لوگوں سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہے، یا بعد میں آنے والے حضرات کے لیے اس کے سوا کوئی انتظام نہیں پاتا کہ بعض بے تکلف لوگوں کو مجلس سے اٹھا دے. یعنی جن لوگوں کے ساتھ ذرا ایک اچھی ریلیشن شپ ہے نا تو ان کو اب کبھی اٹھانا بھی پڑتا ہے کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ ریگولر لوگوں میں سے ہیں اور آپ تو لوکل ہیں، یہ لوگ جو ہیں ذرا باہر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو آپ ان کے لیے جگہ خالی کر دیں، آپ کہیں ذرا باہر جا کر کے بیٹھ جائیں، کسی اور طریقے سے آپ بات کو سن لیں اور ان کو اندر آنے کا موقع دے دیں. تو یہ میرے مجلس نا یہ اس قسم کے کام کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے منتظمین بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جائز ہے. جن کے متعلق معلوم ہو کہ ان کا کوئی نقصان مجلس سے اٹھنے میں نہیں ہوگا، یہ دوسرے وقت میں استفادہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، البتہ صاحب مجلس یا منتظمین مجلس کے لیے یہ لازم ہے کہ طریقہ ایسا اختیار کریں کہ اٹھنے والا اپنی خفت محسوس نہ کرے، اس کو ایذا نہ پہنچے. ٹھیک ہے، اچھا مجھے بچپن کی ایک بات یاد آئی کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے، یعنی اتنے بھی خیر چھوٹے نہیں تھے، میرے خیال میں یہ لیٹ 80s کی بات ہوگی، تو اسلام آباد جانا ہوا، پاکستان کا جو کیپٹل ہے، تو وہاں پر نا پھر ہم جب شاہ فیصل مسجد دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پر ہمارے جو بزرگ تھے جو ہمیں لے کے گئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات بتائی کہ جو جمعے کی نماز ہوتی ہے نا تو جو صدر مملکت ہیں وہ شاہ فیصل مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ان کا کب کس سال میں شہادت ہوئی تھی ان کی، غالباً وہ ضیاء الحق ہی اس وقت پاکستان کے صدر تھے، تو وہ نا شاہ فیصل مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اب پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے سیکیورٹی بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، تو ان کو ذرا ایک اسپیشل جگہ پہ بٹھانا سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگرچہ کہ وہ بڑے ڈفرنٹ قسم کے آدمی تھے لیکن بہرحال سیکیورٹی ایک نیڈ ہوتی ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے تھے نا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ کرتے تھے کہ وہ آگے کی صف کے اندر نا پہلے سے لوگ بٹھا دیتے تھے جو کہ گورنمنٹ امپلائیز ہوتے تھے، اور ان کا خالی وہ سیکیورٹی کے ہی لوگ ہوتے تھے. تو वो इसलिए खाली बैठते थे कि जब प्रेसिडेंट साहब आएंगे ना तो ये लोग अपनी जगह खाली कर देंगे और प्रेसिडेंट साहब इनकी जगह आके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये बैठे ही इस नीयत से हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब की जगह रखने के लिए, ताकि किसी अवामुन नास में से किसी को उठाने की जरूरत ना पड़े, किसी को जो है ना वो जगह छोड़ने के लिए कहना ना पड़े। जितने लोग गेस्ट आ रहे हैं ना तो उन गेस्टों के तादाद के मुताबिक अपने बंदे वहां पहले से बिठा देते हैं, और वो लोग जो है जाहिर है बिल्कुल शुरू में आकर के बैठ जाते होंगे, तो उनका तो काम ही है था। तो इस किस्म का इंतजाम जो है ना वो जाहिर है, मुझे तो यही गुमान है कि उलमा के मशवरे से उन्होंने काम किया हुआ होगा। बहरहाल अच्छे जमाने थे वो, यानी बेहतर थे आज के मुकाबले में कम अज़ कम। एनीवेज, तो आगे फरमाया कि अलबत्ता साहिब मजलिस या मुंतजमीन मजलिस के लिए लाजम है कि तरीका ऐसा इख्तियार करें कि उठने वाला अपनी खिफत महसूस ना करे, उसको ईजा ना पहुंचे। और जिस वाक़े में ये आयत नाजिल हुई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा मस्जिद में तशरीफ रखते थे, ये जगह हाजरीन यानी सुफ़ा मस्जिद में, तो मस्जिद नबी के पीछे की तरफ जो एक थोड़ा चबूतरा वगैरह चबूतरा की शक्ल की जगह थी जिसको कि सुफ़ा कहते हैं, तो वहाँ पर तशरीफ रखते होंगे, तो ये जगह हाजरीन से पुर हो चुकी थी। बाद में बाज़ अकाबिर सहाबा जो शुरकाए बदर होने के सबब काबिले एहतराम ज़्यादा थे वो पहुँचे, और जगह ना होने के सबब खड़े रहे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो आम हुक्म ये दिया कि ज़रा खिसक कर मजलिस में कुशादगी पैदा करो और उनको जगह दे दो, और बाज़ हजरात सहाबा को उठ जाने के लिए भी फरमाया। जिनको मजलिस से उठाया उनमें यह भी एहतमाल है कि वो हर वक्त के हाजिर बाश लोग होंगे, जिनके इस वक्त की मजलिस से उठ जाने में कोई बड़ा नुकसान नहीं था। और ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मजलिस में वसत करने और सिमट कर बैठने का हुक्म दिया तो कुछ लोगों ने इस पर अमल नहीं किया, तो उनको तादीबन मजलिस से उठ जाने का हुक्म दिया हो। यानी ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। या तो ये कि बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोएक्टिवली लोगों को उठने के लिए कह दिया हो क्योंकि इनफ जगह नहीं बन रही थी, ठीक है ना, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ये भी है कि कुछ लोग जो है वो हुक्म देने के बावजूद खिसके नहीं, क्योंकि खिसकना खिसकना अपनी जगह से एक ऐसा फेल है कि जो कि बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, हर कोई उसको नोट नहीं कर सकता। तो जो मुनाफिकीन थे ना तो उन्होंने आपसे की बात को इग्नोर किया और जैसे थे वैसे ही बैठे रहे कि हाँ भी कोई और खिसक जाएगा, राइट, बराबर वाला खिसक जाएगा, मैं क्यों खिसकूं, ठीक है। तो जब ऐसे लोग जिन्होंने हुक्म के बावजूद जगह कुशादा नहीं करी ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको अदब सिखाने के लिए, तादीबन का मतलब होता है टू टीच देम ए लेसन, ठीक है, तो उनको फिर उठ जाने का हुक्म दिया हो। बहरहाल इस आयत और अहादीस वारिदा से आदाब मजलिस के मुतअल्लिक एक तो ये बात मालूम हुई कि अहले मजलिस को चाहिए कि बाद में आने वालों को जगह देने की कोशिश करें, और दूसरी बात आने वालों के लिए ये साबित हुई कि वो किसी को उसकी जगह से ना उठाएं। तीसरी बात साहिब मजलिस के लिए ये साबित हुई कि वो ज़रूरत समझे तो बाज़ लोगों को मजलिस से उठा देने की भी उसको गुंजाइश है, यानी उसका एक हक साबित हो गया साहिब मजलिस का, यानी जो सरबराह मजलिस है अमीर मजलिस है उसको इस बात का हक हासिल है। और बाज़ दूसरी रिवायात हदीस से साबित होता है कि आने वालों के लिए अदब यह है कि पहले से बैठे हुए लोगों में घुसने की बजाय किसी किनारे पर बैठ जाए, जैसे कि सही बुखारी की एक हदीस में तीन आने वाले शख्सों का जिक्र है, इनमें एक वो भी था जो मजलिस में जगह ना पाने की वजह से एक गोशे में बैठ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फिर तारीफ और सना फरमाई थी, यानी एक जो है वो तो अंदर आके बैठ गया था ना, और दूसरा जो था वो दरवाजे में बैठ गया था, और तीसरा जो था ना वो पलट गया था, वापस चला गया था। तो जो वापस चला गया तो उसकी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ऊपर तनकीद फरमाई थी, और जो बैठ गए थे तो उनके लिए आप यानी तारीफ फरमाई थी उनकी। अच्छा, तो मजलिस के आदाब फिर इस तरीके से कुरान के अंदर ताला बयान फरमाए। अब मसला एक लिखते हैं, यानी एक शरी मसला या वो, यानी इसके बारे में हम आते हैं कि मजलिस के आदाब में से एक ये भी है कि दो शख्सों के दरमियान बगैर उनकी इजाज़त के दाखिल ना हो, कि बाज़ औक़ात दोनों के यकजा बैठने में उनकी कोई ख़ास मसलहत होती है। हज़रत उसामा बिन जैद लईसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत अबू दाऊद तिर्मिज़ी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला यहिल्लु लिरजुलिन अन युफर्रिक़ बैना इस्नैन इल्ला बिइज़्निहिमा, यानी किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि दो शख्स जो मिल बैठे हैं उनके दरमियान तफरीक पैदा करे जब तक कि उनसे इजाज़त ना मिले। ठीक है, तो पहले पूछ लेना चाहिए कि जी मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है, या ये कि इंतजार करना चाहिए कि भाई ये लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो जब इनकी बात मुकम्मल हो जाएगी तब मैं इनके साथ जाके बैठूं, ठीक है। तो इतने इतने यानी आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह खल्क के काम में तो शब व रोज़ मशगूल रहते ही थे, मजालिस आम्मा में सब हाजिरीन मजलिस आपके इरशादात से फ़ायदा उठाते थे। इस सिलसिले में एक सूरत ये भी थी कि बाज़ लोग आपसे अलहदगी में खुफिया बात करना चाहते थे और आप वक्त दे देते थे, ठीक है। यानी देखें, ये जो सिलसिला हमारे मशाइख का आज हमें नज़र आता है ना, कि एक तो होती है जनरल डिस्कशन, ठीक है, ये जिसको कि एक खुतबे की शक्ल कही जाती है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज से पहले बाकायदा एक खुतबा होता था, और जैसे हज्जतुल वदा के मौके के ऊपर खुतबा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लाखों लोग आगे मौजूद थे, उन सबको खुतबा दिया, ऊँटनी पे सवार होकर के दिया, कहीं खड़े होकर के दिया वगैरह, राइट। तो ये भी एक शक्ल है जिसको हम जरा आज की जुबान में कह सकते हैं वन टू मैनी, ठीक है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन, बोलने वाला एक है और सुनने वाले बहुत सारे हैं। फिर एक होता है जिसको कि एक यानी खसूसी मजलिस कहा जाता है। ये खसूसी मजलिस की शक्ल क्या होती है कि इसके अंदर जरा कम लोग होते हैं लेकिन बोलने वाला एक ही होता है, ठीक है, और इस मजलिस के अंदर ना थोड़ी सी यानी टू वे कम्युनिकेशन भी हो जाती है। होता तो एक ही स्पीकर है लेकिन आगे से फिर फीडबैक वगैरह और आगे से भी फिर लोग कुछ ना कुछ बीच में बोल देते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस तरह की छोटी मजलिस में भी जो कि मस्जिद नबवी के अंदर रेगुलरली इस तरह की मजलिस होती थी जिनको खसूसी मजालिस कहा जाता है, हमारे मशाइख की टर्म में इसको खसूसी मजालिस कहा जाता है। ये उमूमन जो है वो जैसे बयान के बाद कुछ लोग बाकी रह जाते हैं ना, तो उनके साथ जो बैठते हैं ना, इसको खसूसी मजलिस की शक्ल कहते हैं। और तीसरी जो कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है, ये वन टू वन कम्युनिकेशन ये भी सुन्नत से साबित है और इसकी भी जरूरत होती है। बाज़ औकात वन टू मैनी कम्युनिकेशन से बात पूरी समझ में नहीं आती, ठीक है, बल्कि अलग से पूछना भी पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि वन टू मैनी कम्युनिकेशन से आपको उसूल तो समझ में आ जाते हैं लेकिन खास अपने मामले में मैंने उसको कैसे अप्लाई करना है अपने ऊपर अपनी फैमिली के ऊपर, ये वन टू मैनी कम्युनिकेशन में बंदा नहीं समझ पाता, तो उसके लिए फिर वन टू वन कम्युनिकेशन जरूरी होती है, ठीक है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी सुन्नत में साबित, सुन्नत से साबित है, और इस किस्म की यानी इसी को फिर ये तनाजई तुमर रसूल फरमाया, ठीक है, नाजई तुमर रसूल कि जब नबी रसूल से इस तरीके से लोग इंडिविजुअली बात खुफिया बात करना चाहते हैं, जाहिर अपने पर्सनल मामला डिस्कस करने होते हैं तो वो खुफिया तरीके से ही करने पड़ते हैं ना। आप तो नहीं चाहते कि जी अपने घर के मामला आप लोगों के सामने डिस्कस करें, लोगों को भी पता चले कि जी आपके घर के अंदर क्या तमाशे होते हैं, ऐसे तो नहीं चाहते ना लोग, तो वो खुफिया बात करना चाहते हैं, तो आप वक्त दे देते थे, ठीक है। जैसे हमने अपने मशाइख को देखा कि इस तरह का इंडिविजुअल टाइम लोगों को देते हैं। क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई कमर या किसी और तकलीफ की वजह से पीछे बैठा हो या दीवार के साथ या फिर ऊपर चेयर पर, तो कोई बेअदबी का मुर्तकिब तो नहीं? इसमें दोनों बातें हैं कि एक तो ये कि जाहिर है आप अगर जेन्युइन मजबूरी की वजह से आप इस तरह से बैठे हैं, ठीक है, तो अब ये मजबूरी जो है, एक तो अल्लाह ताला को तो मालूम है आपकी मजबूरी, ठीक है, अलबत्ता दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इस तरह से आप बैठे हैं ना, तो आप उसी वक्त या उसके बाद जैसे ही मौका मिले आप एक्सक्यूज़ के फॉर्म में जो अमीर मजलिस हैं उनको बतला दें कि अगरचे कि ये बेअदबी है पीछे टेक लगा के बैठना, या बाकी लोग जमीन पे बैठे हुए हैं और मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, तो अगरचे कि बेअदबी है लेकिन मेरी मजबूरी थी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा मसला मेरे साथ है, ठीक है। तो अब उनके दिल में भी कोई ऐसी बात पैदा नहीं होगी कि भाई ये कौन स्पेशल लोग आ गए, कि भाई बाकी सब ऐसे हैं और ये अलग से इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो जो करीबी जानने वाले लोग होते हैं तो उनके बारे में वैसे ही पता होता है कि हाँ भाई ये जानबूझ के बेअदबी करने वाले लोग नहीं हैं, तो किसी न किसी मजबूरी की वजह से ऐसे बैठे होंगे। लेकिन वैसे ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो कि खास कर जो है ना वो बेअदबी ही के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारे हजरत एक वाक्य सुनाया करते हैं कि जब हमारे शेख के जो शेख थे ना हजरत मुर्शिद आलम मौलाना गुलाम हबीब रहमतुल्लाह, जब वो अमेरिका गए बयानात करने के लिए, तो अमेरिका का तो वो तो ज़माना भी था 1980s का, 1990s का, ठीक है। तो वो मस्जिद में बयान करना जब उन्होंने शुरू किया तो जितने लोग बयान सुनने के लिए थे ना, वो सारे के सारे जो हैं वो दीवारों से टेक लगा करके पीछे बिल्कुल इस तरह से नवाब की तरीके से पसर करके बैठे हुए। तो हजरत ने ना बयान शुरू करने से पहले ना ज़रा अच्छी तरीके से उनको डांटा कि लोगों मैं यहाँ पर ना तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, ठीक है, कि तुम जो है वो इस तरह से एहसान कर रहे हो बैठ करके, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ देने के लिए आया हूँ, ठीक है, तो जरा तमीज से बैठो, आगे आकर के बैठो, ठीक है। तो फिर वो कम से कम वो ऐसे लोग नहीं थे कि जोड़ करके चले जाए, तो आकर के आगे बैठ गए। फिर तो ये जो था वो एक बेअदबी वाला तरीका था कि भाई जब आप बैठ सकते हैं, आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आप क्यों दीवार से टेक। और ये बहुत कॉमन था, ये आज भी शायद होता होगा, लेकिन पहले तो ये बहुत कॉमन था वहाँ पर। बहरहाल तो फरमाते हैं कि इस सिलसिले में एक सूरत ये भी थी कि बाज़ लोग आपसे अलहदगी में खुफिया बात करना चाहते थे और आप वक्त दे देते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जहन में आई जो कि बल्कि आज सोचा था कि बाकायदा मैसेज में लिख करके भी लोगों को भेजी जाए, तो वो भी चूँकि मौका है, बात भी इसी से रिलेटेड है। तो ये है कि ये जो इंडिविजुअल मशवरा होता है ना, ये जैसे अभी अभी मैंने कहा ना कि ये एक ज़रूरी होता है, ठीक है, इसके बगैर आपको सही तरह से मैसेज समझ में नहीं आता, या ये कि उस मैसेज को कैसे अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करना है, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं समझ में आता। तो इस वजह से ये इंडिविजुअल मुलाकातें जो होती हैं ना, ये नेसेसरी होती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो इस परेशानी की वजह से मुलाकात नहीं करते हैं कि भाई हमें तो समझ में ही नहीं आता कि हम क्या पूछें, तो हम इस वजह से मुलाकात ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम पूछें क्या, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये एक एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ये यानी एक जेन्युइन सिचुएशन है कि वाकई आपको समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता, इसकी भी रीजंस हैं, क्यों समझ में नहीं आता कि क्या पूछें, उसकी रीजंस क्या है, क्योंकि ये जो दीनी अपनी जाती जिंदगी के अंदर दीन को इम्प्लीमेंट करना, ये एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ठीक है। इसके लिए किसी से पूछना, ये हमारे लिए एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही यानी एक अजनबी कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि या तो हम दीन के ऊपर चलने के बारे में सीरियस बिल्कुल नहीं होते, या अगर थोड़े सीरियस हो भी जाते हैं ना तो हम समझते हैं कि बस किताब को पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ये पूछना जो है ना किसी से, लाइव इंटरैक्शन, ये हमारे अभी यानी माइंडसेट के अंदर ना ये एंटर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये हमें समझ में नहीं आता कि भाई क्या पूछें जा करके, ठीक है। तो इसका बड़ा अच्छा जवाब है, इसका बड़ा अच्छा और बड़ा सादा जवाब है। वो क्या है, वो ये है कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछें, तो आप यही सवाल आकर के पूछ लें कि मैं क्या पूछूं, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि मैं क्या पूछूं आपसे, राइट, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर मी, व्हाट शुड आई एस्क यू, ये भी तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो और कोई सवाल अगर आपके जहन में ना आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो ये सवाल तो है ना आपके पास, तो यही सवाल जाकर के पूछ लो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जिस जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना कि जी मैं क्या पूछूं, तो वो यही पूछ ले आकर के, ठीक है। इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत सेट करने के लिए अच्छा जवाब मौजूद है कि क्या पूछें, ठीक है। तो वो तो फिर जिससे पूछी जा रही है, जिससे पूछा जा रहा है, तो उस पर छोड़ें कि वो इसका क्या जवाब देते हैं, ठीक है। फिर देखें कि फिर आपको कुछ बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है, कि जी मैं वाकई कोई चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे मशवरे की ज़रूरत है, मुझे गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, लेकिन अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे मशवरा करूं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई फैमिली वाला है, ठीक है, और वो फैमिली को छोड़ करके नहीं आ सकता, कोई मजबूरी है उसकी, ठीक है, कि फैमिली को लेके भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर फैमिली आएगी बच्चे भी होंगे, बच्चे शोर करते हैं, बच्चे जो है वो तंग करेंगे, तो बात नहीं हो सकेगी, ठीक है। और अगर फैमिली को पीछे छोड़ करके आए तो पीछे जो है वो अकेले रह नहीं सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ होते हैं कि जी हस्बैंड एंड वाइफ मशवरा करना चाहते हैं, ठीक है ना, और मशवरा जो है वो बच्चों के बारे में करना चाहते हैं, तो बच्चे छोटे हैं, उनको घर में अकेला छोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है, और बच्चों को साथ लेकर के आएंगे तो बच्चों ने फिर चैन से बैठने नहीं देना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, और अगर थोड़े से बड़े भी हैं तो उनको उनके सामने मशवरा कर नहीं सकते, क्योंकि मशवरा उनके बारे में ही करना है, ठीक है ना। तो अब ये भी तो एक सवाल है ना कि जी कैसे बात करें आपसे। तो भाई अगर आप की समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बात करें, तो भाई जिनसे बात करनी है उनसे पूछ लें, राइट। आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि जी आप ही हमें कोई तरीका बतला दें, आप ही हमें कोई रास्ता समझा दें कि जैसे कि जिससे कि हम आपसे बात कर सकें, क्योंकि हमारे समझ में बात नहीं आ रही कि कैसे आपसे बात करें, ठीक है ना। तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन करना भी एक आर्ट है, इसको भी सीखना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन के जवाब में जो चीज हमें मिलेगी उसको सीखना पड़ता है या उसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बट क्या पूछना है, वॉट टू एस्क, हाउ टू एस्क, ये भी सीखने की चीजें। तो जो टीचर्स होते हैं ना, उन टीचर से ये भी चीजें पूछ लेनी चाहिए, वॉट टू एस्क, हाउ टू एस्क, ये भी टीचर से पूछ लेनी चाहिए, ठीक है। तो आगे लिखते हैं कि इस सिलसिले में एक सूरत ये भी थी कि बाज लोग आपसे अलहदगी में खुफिया बात करना चाहते थे और आप वक्त दे देते थे। तो ये जाहिर है कि एक एक शख्स को अलग वक्त देना बड़ा वक्त भी चाहता है और मेहनत भी, ठीक है। तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम की जाहिर है 24 घंटे आप की भी जिंदगी में होते थे, और जिस तरह से कि उम्मती की जिंदगी में 24 घंटे होते हैं दिन के, उसी तरह नबी की जिंदगी में भी 24 घंटे होते हैं। तो इस वजह से इस तरह से करना जो है वो आप के लिए मुश्किल होता था। तो इसमें कुछ मुनाफिकीन की शरारत भी शामिल हो गई कि मुखलिस मुसलमानों को ईजा पहुंचाने के लिए आप से अलहदगी और सरगोशी का वक्त मांगते थे, यानी नीयत उनकी खराब होती थी और इसके लिए फिर वक्त मांगते थे, और इसमें मजलिस को तूल कर देते थे, ठीक है, यानी लंबा करते थे, खींचते थे अपनी बातों को। बाज नावाकिफ मुसलमान भी बात लंबी करके मजलिस तवील कर देते थे, ठीक है। तो ये मुनाफिकीन की मजलिस तवील करने की रीजन ये होती थी ताकि आप के जो मजलिस के औकात है ना, ये मुसलमानों के लिए कम रह जाए, उनको फायदा हासिल ना हो सके, और ये नबी अलैहिस्सलाम का वक्त जाया फरमा जाया कर दें, ठीक है। तो जो नावाकिफ मुसलमान होते थे तो वो समझते थे, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता था ना कि ये मुनाफिकीन है, वो ये देखते थे कि भाई जब ये लोग इतनी तफसील से आपसे से बात कर रहे हैं तो हम भी तफसील से जरा आपसे से बात करें, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी आपसे से अच्छा फायदा उठाएं। तो ये फायदा उठाने की नीयत से कर रहे होते थे, लेकिन उनका जहन इस तरफ नहीं जा रहा होता था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टाइम है वो बहुत कीमती है, तो हम अपनी बात जरा जल्दी जल्दी कर लें, ठीक है ना, और पहले से तैयारी करके आए। मिसाल के तौर पर जब शेर के पास इंसान जाए, ठीक है ना, तो एक तरीका ये भी है कि वहां जाकर के बैठे और फिर उसके बाद सोचना शुरू करे कि अच्छा बस मुझे क्या पूछना चाहिए, अच्छा फिर उसके बाद एक एक यानी सोच सोच करके उसी वक्त जो है ना वो बात से बात, जिसको कहते हैं जरा यानी गप मारने वाला एक तरीका होता है, तो शेर के पास जाकर के जो है वो गप मारना शुरू हो गए, नई नई बातें सोच रहे हैं, नई नई बातें उस वक्त जहन में आ रही हैं तो कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरीका ये भी होता है कि पहले से सोच करके जाएं, लिस्ट बना करके जाएं, ठीक है, ताकि अपने भी जो कुछ पूछने के सवालात हैं वो भी सारे पूछ लें, ऐसा ना हो कि जी वो सवालात रह जाएं, अहम सवालात रह जाएं, गैर जरूरी सवालात पूछ करके वापस आ जाएं, ठीक है ना। तो लिस्ट बनाने का ये भी फायदा होता है कि अहम सवालात इंसान को याद भी रहते हैं लिस्ट को देख करके, और दूसरा फायदा क्या होता है कि वक्त जाया नहीं होता, उधर बैठ करके नहीं सोचना होता कि अच्छा और भी कुछ पूछ लेता तो कितना अच्छा होता, आपका भी वक्त जाया नहीं होगा और आपसे ज्यादा जो है वो शेख का वक्त कीमती है, उसने और लोगों को भी इसी तरीके से टाइम देना है तो उसका भी वक्त जाया नहीं होगा, ठीक है। तो ये एहसासात होते हैं इंसान के कि जिसकी वजह से ना फिर फायदा बढ़ जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला ना इस तरह के जो एहसास रखने वाले लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनके इस फिक्र को अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो उनके इस वक्त के अंदर फिर ज्यादा फायदा डाल देते हैं अल्लाह ताला, और जो जो है वो बहुत ही लाइटली लेता है इन चीजों को, और बहुत ही बेदिली के साथ और विदाउट एनी प्रिपरेशन और विदाउट एनी कंसर्न फॉर टाइम वो जाकर के बैठ जाता है कि जी हाँ जी मैंने पूछना है और मैंने मैंने जो है मुझे आपका वक्त चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के फिर वक्त के अंदर बरकत नहीं होती। हाँ थोड़ा फायदा उनको हो जाएगा लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा उनको। ठीक है, तो ये मशवरा करने के भी आदाब होते हैं। ठीक है, ज्यादा मैक्सिमाइज करना, इसके लिए भी कुछ तरीके होते हैं, तो ये भी कुछ सीखने की चीजें हैं। मेरा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बोझ हल्का करने के लिए इब्तिदाअन ये हुक्म फरमाया कि जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदगी में खुफिया बात करना चाहे वो पहले कुछ सदका करे। इस सदके की कोई मकदार कुरान में मनकूल नहीं, मगर जब ये आयत नाजिल हुई तो सबसे पहले हजरत अली करमल्लाहु वज्ह ने इस पर अमल फरमाया और 1 दीनार सदका करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदगी में बात करने का वक्त दिया। ठीक है, मुनाफिकीन की जो ये बुरी आदत थी या ये जो बुरी नीयत की वजह से आकर के टाइम लिया करते थे ना, तो इसको बंद करने के लिए अल्लाह ताला ने ये सदके का हुक्म फरमाया। इस आयत में सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमल किया, फिर मनसूख हो गई और किसी को अमल की नौबत नहीं आई। तो हम आते हैं कि ये भी अजीब इत्तेफाक है, यानी अजीब इत्तेफाक से मुराद के अल्लाह ताला की अजीब हिकमत थी इसके अंदर, कि इस हुक्म से चूंकि बहुत से सहाबाए कराम को तंगी पेश आई इसलिए बहुत जल्द ही मनसूख कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला को ये बात पता नहीं थी क्या? पहले से नहीं पता थी कि जब मैं ये हुक्म दूंगा तो इससे कुछ सहाबा के लिए तंगी हो जाएगी? भाई अल्लाह ताला को तो अजल का इल्म है, अबद का इल्म है, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है, जैसे कि शुरू में भी हम बात कर चुके हैं, तो अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसी आयत क्यों नाजिल फरमाई कि जिसको के मनसूख कर देना था बाद में? तो ये अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं। इनके इस सवाल के जवाब तो उलमा ने बहुत अच्छे से दिए हैं, तफसीली जवाब दिए हैं, बिल्कुल ही जो है ना वो डाउट खत्म हो जाता है। लेकिन उस तफसील में जाए बगैर सिर्फ इतना भी जवाब काफी होना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला जो काम करते हैं वो किसी ना किसी वजह से करते हैं। तो आयत को नाजिल करके या हुक्म को नाजिल करके उसको मनसूख फरमा देना, इसके अंदर भी अल्लाह ताला की हिकमत है। ठीक है, आसान हिकमत, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो उसका जवाब उसके खातिर के मुनाफिकीन को दफा करना तो इस हुक्म की हिकमत थी ना। ठीक है, लेकिन हुक्म दे करके उसको मनसूख कर देना, इसमें क्या हिकमत है इन जनरल? ठीक है, तो उसमें एक हिकमत ये होती है कि जैसे कि डॉक्टर्स कभी एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देते हैं ना, और उसके बाद फिर उस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को चेंज कर देते हैं क्योंकि अब उस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की जरूरत नहीं है, जो डिजायर्ड इफेक्ट था वो हासिल हो गया, तो अब उस मेडिसिन को चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला की जो आयात हैं या अहकाम हैं, ये भी इंसानों की यानी इस्लाह के लिए हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हैं, क्योर के लिए हैं। तो जब एक चीज से क्योर हासिल हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको बाद में चेंज कर देते हैं, एब्रोगेट कर देते हैं, और कोई दूसरा क्योर जो है वो उनको दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये एक हिकमत है आयात को मनसूख कर देने की, अहकाम को मनसूख कर देने की। ठीक है, दूसरी हिकमत इसके अंदर एक और भी बहुत बड़ी समझ में आती है कि ये जो मामलात होते हैं ना, नासिक और मनसूख, ये मामलात जो है ना, ये मुनाफिकीन के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाते हैं। ठीक है, यानी वो लोग जो कि सतही तौर पर हुक्म मान रहे होते हैं, दिल से हुक्म नहीं मान रहे होते हैं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को और कुरान को अल्लाह ताला की तरफ से नहीं समझ रहे होते हैं, बल्कि अपनी अकल के तराजू पर बातों को मान रहे होते हैं कि मेरी अकल में बात आ रही है तो मैं मान रहा हूं बस। ठीक है, इसलिए नहीं मान रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बात कही है या कुरान में ये बात मौजूद है, तो यकीनन ये सच होगी, यकीनन ये हिकमत से भरी हुई होगी, इसलिए नहीं मान रहे, बल्कि मेरी अकल में बात समझ में आ रही है ना, इस वजह से मैं मान रहा हूं। तो अब जो इस तरह के मामला होते हैं ना, नासिक मनसूख वाले मामला, अब ये तो उनकी अकल में नहीं आते ना आसानी से, इनकी अकल में नहीं आते, तो अब ये इन चीजों का इनकार कर देते हैं, खुल करके मुखालफत शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, तो इनको यानी दूर करने के लिए या इनकी मुनाफिकत जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे मामलात रखे हैं, ठीक है, जैसे कि नासिक और मंसूक वाला मामला। ओके, तो यानी जिसको कहते हैं ना, खरे को खोटे से जुदा कर देना, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे मामलात रखे। अच्छा, ये हो गया, ये पैराग्राफ बस पढ़ लेते हैं आज की क्लास खत्म करने से पहले। तो फरमाया कि हाँ, कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि एक कुरान में एक आयत ऐसी है कि जिस पर मेरे सिवा किसी ने अमल नहीं किया, ना मुझसे पहले किसी ने अमल किया और ना मेरे बाद कोई करेगा। पहले ना करना तो जाहिर है कि जाहिर है उससे पहले ये हुक्म आया ही नहीं था, तो कैसे कोई अमल करता। बाद में ना करना वो इसलिए हुआ क्योंकि ये आयत मनसूख हो गई, और वो आयत यही तकदीम सदका की है कि जब तुम नबी अलैहिस्सलाम से मशवरा करने के लिए, यानी सरगोशी में मशवरा करने के लिए जाओ, तो पहले सदका दे दिया करो। यही आयत जो है ना, वो ऐसी थी कि जिस पर सिर्फ अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमल किया और फिर वो मनसूख हो गई। तो ये हुक्म अगरचे मनसूख हो गया, मगर जिस मसलहत के लिए जारी किया गया था वो इस तरह हासिल हो गई कि मुसलमान तो अपनी दिली मोहब्बत के तकाजे से ऐसी मजलिस तवील करने से बच गए। ठीक है, यानी वो बेचारे नावाकिफी की वजह से मजलिस को तवील कर दिया करते थे, मोहब्बत की वजह से, कि भाई हम ज्यादा टाइम नबी अलैहिस्सलाम के साथ स्पेंड कर लें। ठीक है, तो वो भी उस गलती से बच गए क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ हो रही होती थी और उनका वक्त जो है वो जाया हो रहा होता था इस तरह से, तो वो बच गए इस बात से। और मुनाफिकीन इसलिए कि आम मुसलमानों के तर्ज के खिलाफ हमने ऐसा किया ना, तो हम पहचान लिए जाएंगे और निफाक हमारा खुल जाएगा, क्योंकि इनको तो जाहिर है अपना निफाक जो है वो छुपा छुपा कर रखना होता था, और इस तरह अगर वो कोई हट करके कोई रवैया अख्तियार करते तो उनका निफाक फिर मुसलमानों के ऊपर जाहिर हो जाता। तो अब वो भी इस काम करने से रुक गए, तो मसला मकसद जो है वो पूरा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, जनरल या क्लास के टॉपिक से रिलेटेड जो भी हो। चलिए, मेरे ख्याल में नहीं है किसी को सवाल। अगर है किसी को और वो लिखना चाह रहा है तो रेज हैंड करके आप बता सकते हैं कि आप सवाल पूछने वाले हैं, तो आपका इंतजार कर लिया जाएगा, अदरवाइज फिर हम क्लास खत्म कर देते हैं। चलिए, किसी ने रेज हैंड भी नहीं किया है। अच्छा, आप कर रहे हैं सवाल, चलिए आप लिख लें। अगर किसी को जाना है तो क्लास टाइम खत्म हो चुका है, तो आप कर सकते हैं। इस हुक्म की ड्यूरेशन कितनी थी? एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है किसी किताब में लिखी हुई भी हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि बहुत कम ड्यूरेशन ही थी। ठीक है, चंद दिन हो सकता है क्योंकि सिर्फ एक ही सहाबी ने इसके ऊपर अमल किया ना। अगर ज़्यादा ड्यूरेशन होती तो फिर कुछ तो और लोग अमल कर पाते इसके ऊपर। इंडिया में दिवाली हो रही है, मुसलमान हैप्पी दिवाली ग्रीटिंग्स दे सकते हैं हिंदुओं को? नहीं, हैप्पी दिवाली ग्रीटिंग्स बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ठीक है, ये हराम है। ठीक है, और ना सिर्फ दिवाली बल्कि जो भी काफिरों के त्यौहार हों, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो यानी यहूदियों का क्या कहते हैं उसको, हनुका कहते हैं क्या, जो कि जो भी किसी का त्यौहार हो ना रिलीजियस, क्योंकि इन त्यौहारों के फाउंडेशन में ना इनके रिलीजियस बिलीव्स होते हैं। ठीक है, ये रिलीजियस त्यौहार जो होते हैं ना, इनके अंदर अकायद जो है ना वो मौजूद होते हैं। इवन अगर आपको अगर बाहर बाहर से नजर नहीं भी आ रहे ना, तो भी इनकी बेस के अंदर तो है मौजूद। तो अगर आप इसके अंदर किसी को ग्रीट करेंगे ना, तो उस अकीदे को आप यानी अपने अमल से कंफर्म करने का गुनाह कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर उलमा ने बात समझाई है कि एक तो ये गुनाह तो है, लेकिन ये ईमान के जाया कर दिए जाने का भी सबब बन सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक बात जो कि एक्चुअली क्लास से थोड़ी देर पहले ही मेरे जहन में आ रही थी, वो भी सुन लीजिए कि ये एक अजीब यानी हमारी समझ की कमी है या क्या है, कि हम जो है ना वो चीजों के अंदर इन्वॉल्व कभी इस वजह से भी हो जाते हैं कि भाई हर कोई कर रहा है, तो जब इट इज बीइंग डन एनीवेज तो क्या हो गया अगर मैंने भी कर लिया। ठीक है, तो ये जो है ना, क्या हो गया, मैंने भी कर लिया, क्योंकि ये तो लोग कर ही रहे हैं, तो ये जायज नहीं है, क्योंकि हर बंदे का फेल उसके साथ होता है। अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनको उसकी सजा मिलेगी, उनके ऊपर उसका गुना होगा। आपने अगर कर लिया, ठीक है, तो इसका गुना आपके ऊपर होगा। तो यानी ये कोई कोई एक्सक्यूज नहीं है कि क्योंकि ये सभी कर रहे थे तो इस वजह से मैंने भी कर लिया। इसके ऊपर तो बाकायदा एक वाकया भी जहन में आ रहा था, हमारे हजरत ने किसी बयान के अंदर सुनाया था कि काफी पहले की बात है, यानी कई 100 साल, 200-300 साल पहले की बात, कि ये क्या होता है, ये दिवाली का होता है जिसके अंदर वो रंग लगाए जाते हैं, रंगों वाला क्या होता है, होली होता है ना। हाँ, तो वो होली का त्यौहार चल रहा था, इंडिया की बात है। तो एक जो है वो मुसलमान बूढ़े साहब जो है वो जा रहे थे, तो चारों तरफ लोग जो है वो होली का यानी रंग फेंक रहे थे, और जाहिर है फिर वो अपनी जो उनका गौ माता होती है उनके ऊपर भी रंग फेंक रहे होते हैं, तो इसी तरीके से वो गायों के ऊपर भी रंग फेंक रहे हैं, दूसरों पर भी रंग फेंक रहे हैं। तो ये जो मुसलमान साहब थे ना, तो ये पान खा रहे थे, ठीक है। तो अब पान आपको पता है कि मुंह के अंदर फिर बाकायदा उसका सुर्ख रंग बनता है, जिसको कि फिर लोग जो है वो थूका करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना क्या किया कि उन्होंने अपनी पान की जो पिचकारी होती है ना, वो एक गाय के ऊपर थूकी और कहा कि चल भाई तू क्यों बची रहे, तेरे ऊपर भी रंग लगा देते हैं, इस किस्म की उन्होंने बात कर दी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना, उनके साथ अल्लाह ताला ने अजाब वाला मामला किया। जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी को वो ख्वाब में आए और उस देखने वाले ने देखा कि भाई ये तो यानी बहुत ही बड़े अजाब के अंदर मुब्तला है। तो फिर उनसे पूछा कि भाई आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस किस्म की एक हरकत कर दी थी, यानी हिंदुओं के साथ मैंने मुशाबहत इख्तियार कर ली थी, ठीक है, उनके रिलीजियस त्यौहार के अंदर मुशाबहत शामिल हो गया था मैं इस एक गाय के ऊपर ना ये रंग लगा करके। तो चूंकि ये शिर्क यानी मुशरिकाना फेल था, तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने मुझे अजाब दिया है। दिवाली की मिठाई कबूल कर सकते हैं, दिवाली की मिठाई जो है ना, ये मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब से पूछते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ये दिवाली की वजह से मिठाई हराम नहीं हो जाती अगर उसके इंग्रेडिएंट्स सही हैं, ठीक है ना, अगर उस वो कंटेंट्स इंग्रेडिएंट्स वगैरह सही है ना, तो वो मिठाई दिवाली की मिठाई होने की वजह से तो हराम नहीं हो जाती, ठीक है। हराम तो उसी वक्त होगी जब उसके इंग्रेडिएंट्स में कोई हराम चीज शामिल होगी, जैसे गाय का पेशाब मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। ये भी बड़ा कॉमन सुना है इंडिया के भाइयों से कि ये बाकायदा छिड़कते हैं अपने खाने की चीजों के ऊपर, पान के ऊपर, मिठाई के ऊपर, राइट, और पकड़े भी गए, बाकायदा वीडियो पे भी इनको पकड़ा गया है, ठीक है। तो इस वजह से वैसे ही एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपको कंफर्म है कि नहीं जी इनकी जो मिठाई है ना वो उसके ऊपर इन्होंने सिस्टम की चीजें छिड़की नहीं है, तो फिर एहतियात के दर्जे में या कराहियत के दर्जे में इनसे फिर भी जो है वो बचना ही बेहतर है, अगरचे के इंग्रेडिएंट्स का ताल्लुक होता है हलाल और हराम हराम से, ठीक है। अगरचे के हत्ता कि मैंने मुफ्ती साहब से बाकायदा फतवा भी पूछा था कि अगर ये अपने मंत्र वगैरह पढ़ करके फूंक भी देना किसी खाने के ऊपर, तो उससे भी वो खाना कुछ नहीं होता, उस खाने को इनके मंत्र पढ़ के फूंक देने से खाने को कुछ भी नहीं होता। और हकीकत यह है कि हम जितने इंडियन चावल इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, यहाँ सारे मिलते हैं ना, हर हर ग्रोसरी स्टोर में, या बड़े बड़े और छोटे, इंडिया के चावल कितने मिलते हैं, तो इंडिया से कोई ग्रेन, कोई चीज उस वक्त तक इम्पोर्ट यानी एक्सपोर्ट नहीं होती जब तक कि उसके ऊपर ये सारी चीजें पढ़ करके फूंक ना दी जाए, उसके बाद वो एक्सपोर्ट होती हैं, और हम माशाल्लाह मजे ले लेकर के खाते हैं, और इसकी इजाजत भी है, इसमें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो गाय का पेशाब जो है वो चावल की बोरियों के अंदर कम से कम नहीं डालते हैं, इतना तो पता है। कैन वी ईट हिंदू फेस्टिवल सर्व फूड, दिस इज कॉमन प्रॉब्लम टू दोज मुस्लिम इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन इंडियन कंपनीज। हिंदू फेस्टिवल सर्व फूड का वो वही वाला मामला है ना, जो दिवाली की मिठाई वाला मामला, तो मेरे ख्याल में वो उसका ये है कि आप इंडिया के मुफ्ती जो साहब होते हैं ना, इंडिया में रहने वाले मुफ्ती साहब होते हैं, उनसे आप यानी इंडियन मुफ्ती साहब, जैसे कि हमारे माशाल्लाह इंडिया के मुफ्ती साहब रियाज में मौजूद हैं, उनसे बेहतर है कि फतवा पूछ लें। भगवान पे चढ़ाते हैं मिठाई, भगवान पे चढ़ाने से या उतारने से वो मिठाई हराम नहीं हो जाती है, इतना तो मैं पूछ चुका हूँ ऑलरेडी। एक कॉलीग ने भिजवाई है तो क्या करें, तो कॉलीग क्या फिर आपको आकर के वॉच भी कर रहा है कि खाई कि नहीं खाई इसने, ये तो मतलब ऐसा भी नहीं होता। तो अगर यानी एक कराहियत तो होती है ना कम अज कम, तो खा भी सक। जैसे कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर पड़ोसी ने आम भिजवाए थे, ठीक है ना, अब वो आम जो है वो उसके ऊपर इस किस्म की वो यानी कोई चीज़ छिड़क तो नहीं सकते ना, उसके इंग्रेडिएंट्स को नहीं चेंज कर सकते ना, तो हमने तो वो आम खाए थे, ठीक है। अब वो उसके अंदर वो उन्होंने कोई पड़ के फूका हो या कुछ भी किया हो, अब अल्लाह का नाम लेकर ये खाए, अल्लाह की चीज़ है, ठीक है। और हिंदू पड़ोसी के साथ कल्बी ताल्लुक के बगैर इस तरह की चीज़ें शेयर करना जो है वो तो जायज़ होता है, कल्बी ताल्लुक ना हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन बाकी जो जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं जैसे मिठाई वगैरह, तो इसमें तो फिर बहुत यानी कराहियत भी बहुत आती है, हम तो नहीं सवाल करें इस तरह की चीज़, ठीक है। चलो तो सलामत।